जयदेवला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सवसाहूणम्, नमीऊणनंतजिणम्, अनंतनाणेन दिठ सौवट्ठम्, कम्म पदे सविहत्तिम् ओच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री भीमसेनाचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक में जो प्रदेश विभक्ति में हम उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति को देखते हुए पृष्ठ संख्या 82 पर आ गए, 82, उसमें हम स्वामित्व देख रहे थे। वहां पूछा गया था, पहले हमने देखा था मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म का स्वामी कौन है, तो ये गुणित कर्मांश वाला नरक के अंतिम समय में लिया था। कहते 12 कषाय और 6-9 कषायों के भी उसी प्रकार है। उसी प्रकार का अर्थ क्या है, अपनी अपनी कर्म स्थिति है, उसमें से 2000 सागर कम करके एक केंद्रीय में उनको घुमाना, बादर एक केंद्रीय में पृथ्वी कायिक में, और फिर बाद में उसको त्रस में लाना, बाकी सब जो कंडीशंस है वैसे ही होती है। अब प्रश्न है कि सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाला कौन है। कल हमने सूत्र भी देखा था, तो जो गुणित कर्मांश वाला जीव दर्शन मोनी की क्षपणा करता है, तो जो मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व रूप होता है, तब उसका उत्कृष्ट द्रव्य होता है। तो ये हमने पढ़ा था अभी 82 पृष्ठ पर, नीचे से नीचे का पैराग्राफ, अब 99 नंबर का। अब अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण के काल में की जाने वाली क्रियाओं को विस्तार से कहते हैं। अभी शाम को भी अपना समय ज्ञान चंद्रिका में यही विषय चल रहा है, अपूर्वकरण चल रहे ना अभी, चार कौन से होते होते स्थिति खंडन और अनुभव खंडन, वही बात अभी यहाँ भी बताएंगे। यथा अपूर्वकरण के प्रथम समय में जघन्य परिणाम से, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल से कुछ अधिक गुण श्रेणी को करता है। क्या कहते हैं, अपूर्वकरण के पहले समय से ही जो गुण श्रेणी प्रारंभ होती है उसका आयाम कितना होगा, कितनी बड़ी होगी? हाँ, तो कहते हैं कि अंतर्मूर्त, कौन सा अंतर्मूर्त, अपूर्वकरण का काल प्लस अनिवृत्तिकरण का काल, यहाँ लिखा ना, और कुछ अधिक प्लस, इतनी गुणश्रेणी का आयाम होगा। एक ही गुणश्रेणी चलती रहेगी ना, गुणश्रेणी एक ही चलती। गुणश्रेणी का अर्थ क्या है, जितने निषेकों में असंख्यात गुणा क्रम से पंक्ति रूप जो द्रव्य दिया जाएगा, नीचे के निषेकों में जितना दिया जाता है उससे ऊपर, उससे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा, ये कहाँ से दिया जाता है, तो ऊपर के निषेकों में परमाणुओं का अपकर्षण होता है और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन नीचे के अपने ओरिजिनल निषेक तो है ही है, उसमें और एडिशनल माल दिया जाता है, ऊपर के निषेकों में से परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, अपकर्षण होता है, स्थिति घटती है, तो कुछ तो उदयावली में दिए जाएंगे। ये सब ऐसे निषेक हम मान लेते हैं, है भी सबके ओरिजिनल है ही, अब उसमें एडिशनल जो दिया जाता है, उदयावली में तो विशेषहीन क्रम से दिया जाएगा, उदयावली में, और आगे असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाएगा। यहां जितना दिया दूसरे ऊपर के निषेक में, उससे असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा। ये तो पहले समय में हुआ, दूसरे समय में टोटल जो माल नीचे आता है वो उससे भी असंख्यात गुणा होता है, और फिर वो उसी पद्धति से दिया जाएगा। तो ये जो गुण श्रेणी का आयाम है उदयावली के ऊपर वो कितना है, तो कहते हैं अपूर्वकरण का प्लस अनिवृत्तिकरण का काल प्लस थोड़ा और ये प्लस एक्स्ट्रा, इतना मिलकर गुण श्रेणी का आयाम होगा। ऊपर के जो परमाणु है सारे उसको विशिष्ट संख्या से भाग देते हैं, और वो एक भाग प्रमाण परमाणु नीचे आते हैं, नीचे आते हैं फिर भी उसमें फिर डिवीजन होती है, उदयावली में कितना दिया जाएगा, गुण श्रेणी में कितना दिया जाएगा, और इसके ऊपर ऊपरी तन में ऐसे घटते हुए क्रम से दिया जाता है। यानी उदयावली में विशेषहीन विशेषहीन, गुण श्रेणी में असंख्यात गुणा, और ऊपर वो भी विशेषहीन क्रम से दिया जाएगा, इस तरह से दिया जाता है। अंतिम कुछ निषेक छोड़कर जिसको अति स्थापना कहते हैं, अब इसको पढ़ेंगे। अब अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण काल के, हाँ यथा, सेकंड लाइन, अपूर्वकरण के प्रथम समय में जघन्य परिणाम से, यहाँ जघन्य परिणाम लिया है, क्यों? परिणाम अधिक विशुद्ध हो तो यहाँ तो गुण श्रेणी ज्यादा हो जाएगी, निर्जरा ज्यादा होगी, हमें संचय ज्यादा चाहिए, इसलिए वहां पॉसिबल। यहाँ तो हमने देखा था, अभी अभी हमने पढ़ा है शाम को भी, अदप्रवृत्तकरण में भी असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम होते हैं, और अपूर्वकरण में असंख्यात लोक गुणा असंख्यात लोक कितने अलग अलग परिणाम होते हैं, उसमें से जघन्य परिणाम के द्वारा ये कर रहा है, क्योंकि हमें तो कम से कम निर्जरा चाहिए, संचय प्रदेशों का अधिक चाहिए। ये अपूर्वकरण गुणस्थान की बात नहीं है, यहाँ पर तीन तो करण परिणामों में जो अपूर्वकरण है, क्योंकि यहाँ दर्शन मोनि के क्षपणा में जो तीन करण होते हैं उस अपूर्वकरण की बात है, आठवें गुणस्थान की बात नहीं है, परंतु वहां जो प्रोसेस होते हैं वे सेम है सब जगह। कहीं भी तीन करण परिणाम होते हैं तो गुणश्रेणी निर्जरा होगी, यानी गुणश्रेणी की रचना होगी, गुण संक्रमण होगा, स्थिति खंडन होगा और अनुभाग खंडन होगा। तो यहाँ जघन्य परिणाम के द्वारा ये सब बातें हो रही है। देखो फिर पढ़ती हूँ, अपूर्वकरण के प्रथम समय में जघन्य परिणाम से, ये जघन्य परिणाम शब्द डाला उन्होंने, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल से कुछ अधिक गुण श्रेणी को करता है। ऐसा करते हुए उदयावली से बाहर की स्थिति में विद्यमान मिथ्यात्व के प्रदेशों को, ये उदयावली को छोड़कर ऊपर के सभी निषेकों में से जो परमाणु है वो नीचे नीचे आते हैं, अपकर्षण होता है, उदयावली वाले निषेकों का और नीचे कहीं गमन नहीं होता। उदयावली के ऊपर एक समय है उसके परमाणु उदयावली में आएंगे, ऊपर वो भी आते रहेंगे, ऐसे ऊपर ऊपर के अपने अपने नीचे नीचे आते रहते हैं। तो आगम, इसीलिए कहते आगमानुसार, आगमानुसार अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से भाजित करके, ये उत्कर्षण भागहार से क्यों भाजित किया? हाँ अरविंद भाई, अपकर्षण उत्कर्षण भागहार क्यों लिया? अपकर्षण भागहार कहना चाहिए था ना, वो सेम ही होता है, भागहार यानी संख्या।
हाँ।
वो अपकर्षण भागहार कहो उत्कर्षण भागहार करो एक ही है, इसलिए उसको अपकर्षण उत्कर्षण भागार कहा। अकेला अपकर्षण भागार कहो तो भी चले, तो कितने परमाणु नीचे आएंगे अपकर्षण द्वारा? तो जो टोटल परमाणु है उसको अपकर्षण भागहार नाम की जो संख्या है उससे भाग देंगे। प्रथम समय में अपकर्षण भागहार संख्या से भाग देकर जो परमाणुओं की संख्या होगी उतने परमाणुओं का अपकर्षण होगा। ये बात ख्याल में आती है कि नहीं? क्योंकि कितने परमाणु आएंगे नीचे उसे कुछ कोई प्रपोर्शन है कि नहीं है? तो कहते हैं कि अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से भाजित करके लब्ध एक भाग, यानी लब्ध एक भाग का अपकर्षण होगा टोटल। अब कहते उसको फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण भागहार से भाजित करके जो एक भाग लब्ध आता है उसका उदयावली में निक्षेपण करता हुआ टोटल कितना अपकर्षित हुआ? तो अपकर्षण भागहार से जो भाग लिया तो इतना है, जो टोटल आया है उसमें से भी कुछ तो उदयावली में जाएगा, कुछ गुण श्रेणी में जाएगा और कुछ ऊपर जाएगा। तो उदयावली में जाता है जो नीचे आया है अपकर्षित द्रव्य, उसको फिर असंख्यात लोक से भाग देना और जो एक भाग प्रमाण द्रव्य उदयावली में जाएगा। हाँ, उदयावली में निक्षेपण करता हुआ वो वहां कैसे किस तरह से दिया जाता है? उदयावली में जो द्रव्य आया है नीचे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है? उदय में बहुत प्रदेशों का निक्षेपण करता है, उदय में यानी उदय रूप जो निषेक है नीचे का उसमें ज्यादा, यहाँ जो दिखा है ना उदय रूप निषेक में ज्यादा माल, उसके ऊपर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, इसको कहेंगे एक एक चय से घटता हुआ। तो उदय रूप निषेक में बहुत, यहाँ लिखा है ना, उदय में बहुत प्रदेशों का निक्षेपण करता है और उससे ऊपर के निषेकों में एक एक चयहीन प्रदेशों का निक्षेपण करता है, एक एक चय से हीन प्रदेश उसमें दिए जाते हैं, एक एक चय कम। अभी तो चय क्या है वो हम देखें डिफरेंस, अभी शाम को ये सारे विषय चल रहे चय क्या है प्रक्षेप क्या है, यानी चय यानी डिफरेंस। तो यहाँ जितना दिया है उससे थोड़ा कम थोड़ा कम, ये जो थोड़ा कम का प्रपोर्शन सर्वत्र सेम है। उदयावली का अर्थ क्या होता है भानु बहन? उदयावली आवली का है ना, उदय के समय से लेकर एक आवली तक के जो निषेक है निषेक उसको हम कहेंगे उदयावली। एक आवली प्रमाण सम, यहाँ उदय के समय से लेकर आवली प्रमाण जो निषेक है उसको कहेंगे उदयावली। तो जितना उदयावली में दिया है वो किस तरह से दिया जाता है? नीचे के निषेक में ज्यादा, फिर एक चय कम दो चय कम तीन चय कम, इस तरह से आवली के जितने समय उसमें एक माइनस करो उतने चय कम करते करते ऊपर दिया जाएगा। यह निक्षेपण उदयावली के अंतिम समय पर्यंत करता है, आवली काल के जितने समय है उसके अंतिम समय तक विशेष हीन क्रम से दिया जाएगा। इसी को गोपुच्छाकार भी कहते हैं, जैसे गाय की पूंछ ऐसे टेपरिंग होती है वैसे यहाँ पर भी इस तरह से दिया जाता है। ये बात ख्याल में आई? अपकर्षण कितने द्रव्य का किया टोटल? तो जो यहाँ परमाणु है उदयावली के ऊपर जितने परमाणु है उसको अपकर्षण भागहार से भाग देकर एक भाग प्रमाण का अपकर्षण होता है। जो टोटल अपकर्षण होता है उससे असंख्यात लोक का भाग दो, एक भाग उदयावली में दिया जाता है। जितना उदयावली में दिया जाएगा तो पहले निषेक में नीचे से पहले उदय रूप निषेक में ज्यादा, फिर थोड़ा एक एक चय से कम, कहाँ तक? उदयावली के अंतिम समय तक। फिर शेष बचे असंख्यात बहुभाग द्रव्य का, क्योंकि हमने अपकर्षित टोटल जो द्रव्य है उसको असंख्यात लोक से भाग दिया था, एक भाग उदयावली में दिया और बहुभाग है यहाँ पर अभी, उस बहुभाग द्रव्य का उदयावली से बाहर के निषेकों में निक्षेपण करता है। उदयावली के ऊपर जितने निषेक है उसमें उसका निक्षेपण यानी उसमें वो दिए जाएंगे। ऐसा करते हुए उदयावली से बाहर के अनंतरवर्ती निषेक में, अनंतर यानी इमीडिएट ऊपर, उदयावली के ऊपर का निषेक उदयावली में किस तरह से दिया था? विशेषहीन विशेषहीन दिया था। तो उदयावली के अंतिम निषेक में जितना दिया है एक्स्ट्रा जो दिया है उससे उसके ऊपर के निषेक में कितना दिया जाएगा, असंख्यात गुना दिया जाएगा, क्योंकि गुण श्रेणी में दिया हुआ द्रव्य ही ज्यादा है। वहां तो एक भाग था, यहाँ असंख्यात बहुभाग है, तो वहां उसमें अधिक दिया जाएगा। तो उदयावली से बाहर के अनंतरवर्ती निषेक में, यानी उस निषेक में जो उदयावली के अंतिम समयवर्ती निषेक से ऊपर का निषेक है, पहले निक्षिप्त द्रव्य से असंख्यात गुणा द्रव्य देता है। उदयावली के अंतिम समय में जितना द्रव्य दिया, उसके ऊपर के निषेक में उससे असंख्यात गुणा द्रव्य दिया, फिर उससे अनंतरवर्ती ऊपर के निषेक में उससे असंख्यात गुणा द्रव्य देता है। अब ये अंतिम समय में तो विशेष हीन यहां तक दिया था, इसमें असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा यहाँ, उससे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा, कितने निषेकों में ऐसा दिया जाएगा? अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों में, जो हमने अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का काल मिलकर जो गुण श्रेणी का आयाम देखा था, और फिर उससे फिर थोड़ा अधिक। इस प्रकार ऊपर ऊपर की स्थितियों में ने निषेकों में असंख्यात गुणे द्रव्य को देता है। इसीलिए उसका नाम क्या है? गुण श्रेणी। इस प्रकार गुण श्रेणी के शीर्ष पर्यंत देता है। ये कितना लंबा है? उसका शीर्ष कहाँ तक? शीर्ष यानी अंतिम निषेक, गुण श्रेणी का अंतिम निषेक, उसको कहेंगे शीर्ष। फिर गुण श्रेणी के शीर्ष से ऊपर के अनंतरवर्ती निषेक में असंख्यात गुणहीन द्रव्य देता है, इसको कहेंगे उपरितन स्थिति। एक होती है उदयावली, एक होती है गुण श्रेणी। अब यहाँ जो असंख्यात गुणा क्रम से दिया था, अब इसके ऊपर का जो द्रव्य है वो एकदम असंख्यात गुणहीन हो जाएगा उसके ऊपर। यहाँ फिर यहाँ जितना दिया पहले में, फिर ऊपर विशेषहीन चला जाएगा। गुण श्रेणी के अंतिम निषेक में जितना दिया, उसके ऊपर के निषेक में असंख्यात गुणाहीन दिया, फिर भी इसमें जितना दिया है उससे उसके ऊपर विशेषहीन, एक एक चय घटता हुआ कहाँ तक? ऊपर तक दिया जाएगा। ये सारे उपरितन में विशेषहीन क्रम से, जैसे उदयावली में विशेषहीन क्रम से दिया था, वैसे उपरितन में भी विशेषहीन क्रम से दिया जाएगा।
यहाँ पे जो ये सम्यक मिथ्यात्व के निषेकों की बात है, जब ये द्रव्य की बात है,
यहाँ जो यहाँ पे
ये जो अभी जो सपना कर रहा है, उसके तो मिथ्यात्व भी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक
अभी
हो रहा है।
उसमें ये जो गुण श्रेणी होती है, हाँ, कौन से कर्म में होगी? मेरा क्या सवाल है? गुण श्रेणी यहाँ जो हो रही है
सम्यक, तो
आयु को छोड़कर सभी में होगी, तो मिथ्यात्व में भी होगी, सम्यक मिथ्यात्व में भी होगी, सम्यक प्रकृति में भी होगी। परंतु मिथ्यात्व का उदय रूप नहीं है। मिथ्यात्व की जो गुण श्रेणी है उदयावली में तो है ही नहीं ना, उदय रूप नहीं है वो,
एक निषेक का
उदय रूप है ही नहीं है, तो कहां पर है? ऊपर है,
ऊपर है।
उसकी गुण श्रेणी तो बनेगी, क्योंकि सम्यक्त्व की भी गुण श्रेणी उदयावली के ऊपर ही है। नहीं समझे?
नहीं, वो तो समझ गया।
किसी भी कर्म की गुण श्रेणी कहाँ पर है? उदयावली के ऊपर है,
ऊपर है एक आवली।
तो मिथ्यात्व में भी इतनी गुण श्रेणी तो बनेगी। अब जब ये माल नीचे नीचे आएगा, एक एक समय नीचे का खिर जाएगा उदय का, तो जो अभी गुण श्रेणी का पहला समय है वो उदयावली में आ मिलेगा, क्योंकि ये अधिक द्रव्य के साथ वो उदयावली में आया है। फिर आवली प्रमाण, उसमें थोड़ा थोड़ा माल तो आता ही रहेगा, फिर नेक्स्ट आएगा और ये नीचे से कम होती चली जाएगी गुण श्रेणी, यानी वो माल उदय रूप हो जाएगा। जो उदय रूप होगा तो मिथ्यात्व का माल सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आएगा। दोनों ऊपर पड़े ना एक समय के ऊपर,
सम्यक
मिथ्यात्व में थोड़ा जाता रहेगा हर समय, क्योंकि उसका संक्रमण तो वहां भी हो रहा है, परंतु उदय के समय के ऊपर का जो निषेक है मिथ्यात्व रूप, वो डायरेक्ट सम्यक प्रकृति रूप भी हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहते हैं देखो, गुण श्रेणी के शीर्ष से ऊपर के अनंतर्वर्ती निषेक में असंख्यात गुणहीन द्रव्य, शीर्ष यानी अंतिम निषेक, गुण श्रेणी का अंतिम निषेक उसको शीर्ष कहा, और उसके ऊपर के सभी स्थितियों को उपरीतन स्थिति कहेंगे। तो शीर्ष के ऊपर का जो निषेक है उपरीतन वाला, उसमें असंख्यात गुणहीन द्रव्य दिया जाएगा। हाँ, यहाँ जो लास्ट वाला है इसमें कितना दिया, उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण इसमें दिया है मान, ये शीर्ष गुणश्रेणी का शीर्ष, उपरीतन का नहीं, गुणश्रेणी का शीर्ष। आगे उसके ऊपर की सब स्थितियों में, स्थितियां में हुआ, स्थितियों में यानी ऊपर तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऊपर की सब स्थितियों में अति स्थापना वाली संबंधी निषेकों को छोड़कर, ये अति स्थापना वाली का अर्थ होता है जिसमें वो अपकर्षण का माल नहीं दिया जाता, तो कहीं भी जो है उत्कर्षण में भी अति स्थापना वाली ही कहते हैं। तो जितने ऊपर के निषेकों में ये माल नहीं दिया जाएगा, आवली प्रमाण उनको छोड़कर नीचे के सर्वत्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अंतिम निषेक का माल कहाँ जाएगा, उसके इमीडिएट नीचे नहीं जा सकता, आवली प्रमाण को लांघ कर सर्वत्र उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अपने अपने नीचे के आवली प्रमाण निषेकों में नहीं दिया जाता, तो इसको कहेंगे अति स्थापना वाली। यहाँ ऊपर के दूसरे निषेक का वो भी अपने नीचे के आवली प्रमाण निषेकों में नहीं जाएगा, यानी ऊपर के आवली प्रमाण निषेकों में से माल नीचे तो आएगा पर उसमें नहीं जाएगा, इसको कहेंगे अति स्थापना वाली। चार माने, हाँ पांचवें में नहीं, उसके भी नीचे चार छोड़कर नीचे जाएगा। मैंने कहा ना अपने अपने नीचे आवली छोड़ना है, परंतु ये ऐसी देखो, हम ऊपर के चार निषेकों की बात करते हैं और फिर उसके नीचे बहुत सारे निषेक हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले का माल कहाँ से नीचे, पांचवे से नीचे सर्वत्र जाएगा। ऊपर के पहले निषेक का माल पांचवे निषेक से सर्वत्र जाएगा, या उसके नीचे चार नहीं अति स्थापना वाली बराबर है, पांचवे से जाएगा। दूसरे का माल छठे से लेकर नीचे जाएगा, तीसरे का सातवें से, चौथे का आठवें से। तो चार निषेकों में माल गए, अभी पांचवें में आया भी और पांचवें से नीचे जाएगा भी। पांचवें का माल नौवें से नीचे सर्वत्र जाएगा, परंतु पांचवें में तो ऊपर से भी आया है, तो उसको तो हम अति स्थापना नहीं कह सकते। तो अति स्थापना कहाँ तक होगी, अति स्थापना वाली एक आवली प्रमाण, जिनमें से मात्र नीचे ही माल जाएगा, उसके उसमें नहीं दिया जाएगा। उसको आप अति स्थापना वाली कहेंगे हम, जो हमने माने, जिसे उदयावली हम कहते, जो उदय रूप आवली, वैसे जो अंतिम आवली जिसमें निक्षेपण नहीं किया जाता, उसको अति स्थापना वाली कहते। उपरीतन के लास्ट एक आवली, लास्ट में एक आवली, नहीं उसका समय कैसे खत्म होगा, क्योंकि ऊपर से समय कम होने की बात ही नहीं है जब तक वो निषेक है। अब मान लेते इसका स्थिति खंडन हुआ है, फिर नीचे के अब अति स्थापना वाली कहेंगे, हाँ यानी वो ऊपर के जो है निषेक, ऊपर के आवली प्रमाण निषेकों में माल नीचे आएगा उसमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रूल क्या है, जिस निषेक का माल नीचे आता है अपने नीचे आवली प्रमाण को छोड़कर लांग कर वो नीचे आता है। हाँ नीचे के तो ऊपर के तो ऊपर ही रहेंगे हमेशा। उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि जिनमें बिल्कुल नहीं दिया जाता उसको अति स्थापना वाली कहते हैं, यानी अंत के निषेक तो हमेशा अंतिम ही रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है उन निषेकों का अभाव होकर स्थिति खंडन हो जाता है, तो जो अभी नए अंतिम निषेक कहलाएंगे वहां अति स्थापना वाली कहेंगे हम, उसको अति स्थापना वाली कहेंगे। स्थिति खंडन भी होगा, पर जब तक स्थिति खंडन नहीं हो रहा है तब तक तो उसको हम अंतर्मूर्त तक तो वही अंतिम समय वाले निषेक होंगे। हाँ देखो, देखो आगे उसके ऊपर की सब स्थितियों में अतिस्थापना वाली संबंधी निषेकों को छोड़कर चयहीन चयहीन द्रव्य को देता है। कहाँ? गुणश्रेणी के ऊपर सर्वत्र चयहीन है, एक एक चय से घटता हुआ द्रव्य दिया जाता है। इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण करके, अपूर्वकरण के पहले समय में जितना द्रव्य का अपकर्षण हुआ है दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा द्रव्य का अपकर्षण होता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका देना भी ऐसा ही होता है, उसका क्षपण निक्षेपण इसी प्रकार से होगा। इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण करके गुण श्रेणी को करता हुआ अपूर्व
अपकर्षण भागाकार,
नहीं पहले समय में अपकर्षण भागाकार है और फिर बाद में प्रति समय असंख्यात गुणा होता चला जाता है। गुण श्रेणी को करता हुआ अपूर्वकरण के काल को बिता देता है, यानी अपूर्वकरण के काल में ये गुण श्रेणी चलती रहेगी, फिर अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। वहां भी अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग बीतने तक यही विधि होती है, वहां भी गुणश्रेणी वगैरह चलती है। यहाँ केवल गुणश्रेणी की बात है, अन्य क्रियाओं की बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो प्रदेशों से है। प्रदेश विभक्ति देख रहे हैं ना हम यहाँ पर। जब संख्यात वे भाग प्रमाण काल शेष रहता है तो अंतरकरण करके अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये मिथ्या दृष्टि जो है दर्शन मोहिनी की क्षपणा में,
एक सपना का प्रोसेस दिए तो प्रथम ऑप्शन की बात
ना,
सपना में तो पहले विषयोजन करेगा तो वो सभ्य दृष्टि होगा।
अच्छा, यानी वो उपशम समय दृष्टि की बात है बाद में, क्योंकि मिथ्या दृष्टि नहीं कहेंगे हम उसको। जब संख्यात वे भाग प्रमाण, ये पहले से उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया, पहला उपशमिक समय दृष्टि होता है, फिर विसंयोजना करता है, फिर वेदक होता है, फिर क्षपणा होता है। अंतिम समयवर्ती यानी वो प्रथम उपशम सम्यक्त्व का पूर्ववर्ती समय लिया है। देखो यहाँ तो हम मिथ्यात्व कर्म की गुण श्रेणी देख रहे हैं, औपशमिक सम्यक्त्व लेना है तो उसमें तो अभी हमने सम्यक प्रकृति को भी नहीं लिया है, अभी एकमात्र दर्शन मोहिनी को लिया है। उदयावली में तो विशेषहीन पद्धति से लिया, फिर गुणश्रेणी मिथ्यात्व की गुणश्रेणी की बात है। अन्य कर्मों में तो गुणश्रेणी चलती रहेगी, मिथ्यात्व में क्या होता है, ये ऊपर का माल तो नीचे आता ही रहता है, ये सर्वत्र होती है ना, इसे ये ऊपरीतन स्थिति, इस तरह से मिथ्यात्व की बात थी। अब यहाँ से उदयावली में तो समय बीत जा रहा है, अपूर्वकरण हुआ, अनिवृत्तिकरण का भी संख्यात बहुभाग बीत गया, संख्यातवा भाग शेष रहा, तो यहाँ के बीच के निषेकों का वो अभाव कर देता है। गुणश्रेणी के अभी दो थोड़े से निषेक बाकी है तभी अंतर कर देता है। गुण ये यहाँ से नीचे आएगा ही, पर बीच का अंतर होता है। यहाँ जो निषेक थे उसके परमाणु कुछ नीचे आएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, ऊपर क्यों जाएंगे?
अंतर्गत
अभी मिथ्या दृष्टि है ना, तो नया मिथ्यात्व का बंध भी हो रहा है। तो नया बंध होता है उसका आबाधा छोड़कर ऊपर जो निषेक होते हैं उसमें यहाँ के परमाणु जाके मिलते हैं, और कुछ तो नीचे भी आएंगे। इस तरह से नीचे ऊपर होकर एक अंतर्मूर्त में इतने गुण श्रेणी के ऊपर के निषेकों का अभाव हो गया। यहाँ तक बात ख्याल में आई? हाँ, उपरितन में, उपरितन के नीचे के निषेक उसमें अभाव हुआ।
यह अंतरकरण होता है उस, वो जो निषेक जो ऊपर नीचे जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वहाँ पे नीचे के निषेक में तो स्थिति इतनी नहीं है कि जो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आबादा काल है, तो वो सभी नीचे आने।
आबादा काल कब बनता है? तब आबादा काल होता है,
नया बनता है,
नया बंध का आबादा काल ये जो गैप है ना उसके ऊपर होगा।
तो वहाँ पे ये जो अंतर में जो
अंतर में जो निषेक है
वो ऊपर भी जाएंगे?
बिल्कुल जाएंगे।
तो वो आबादा के ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि उसकी स्थिति तो इतनी नहीं बाकी रहती है। वो जो हमने कल देखा था शक्ति रूप जो वहाँ पे जो है,
अरे क्यों नहीं जाएगा? इसका आबादा कितना होगा अंतिम समय में? मिथ्या तो जो बंधेगा कितना बंधेगा? अंत कोड़ा कोड़ी बंधेगा।
अंत कोड़ा कोड़ी, तो अंत कोड़ा
और उसकी आबादा कितनी होगी? अंतर्मूर्त होगी, अंतर्मूर्त प्रमाण। फिर भी वो अंतर्मूर्त कितना है? जितना गैप करेगा ना उसके बहुत ऊपर है, और उसके ऊपर उतना चला जाएगा ये मिथ्यात्व का कर्म। क्योंकि इसमें भी कितनी स्थिति, इसमें बहुत स्थिति पड़ी हो सकती है, उसको अभी अंत कोड़ा कोड़ी नीचे लाया है। यहाँ जो निषेक आए हैं उसमें से कितने ही ऊपर से अपकर्षण होकर आए हैं, और जो अभी नीचे जाने योग्य नीचे जाएंगे, जो ऊपर जाने योग्य ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ बीच में गैप तैयार हो गया। ये बात ख्याल में आई? यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात हो रही है। अपूर्वकरण से क्या हुआ? गुण श्रेणी शुरू हो गई। देखो गुण श्रेणी में मिथ्यात्व के अधिक परमाणु उदय में आ रहे हैं और मिथ्यात्व मंद हो रहा है। ख्याल में आई बात? गुण श्रेणी रूप रचना होती है तो उदय में तो मिथ्यात्व के अधिक परमाणु आ रहे हैं, असंख्यात गुणा परमाणु उदय में आ रहे हैं, और फिर भी अनुभाग इतना घट रहा है प्रति समय अनंत गुना। तो कितने प्रदेश उदय में आते उससे कुछ उसका निमित्त नहीं बनता है। अनुभाग कितना उदय में आता है, जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध अनुभाग का पड़ता है। ये बात ख्याल में आई अभी तक? नवे गुणस्थान में भी गुण श्रेणी रूप रचना चलती ही रहती है। जब संख्यात बहुभाग बीत जाता है संख्यात वा भाग रहता है, यानी उतने निषेक कभी वहां ऊपर है बाकी, तब जाके उसके ऊपर गैप तैयार होती है, उनके निषेकों का अभाव किया जाता है। शीर्ष, शीर्ष के ऊपर या शीर्ष के साथ ऊपर के कुछ ऐसा आया है, इन्होंने यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है, हमने उपशम सम्यक्त के प्रकरण में लिया। शीर्ष जो है अनिवृत्तिकरण के ऊपर है, इसलिए शीर्ष को ऊपर के कुछ निषेकों के साथ गुण श्रेणी बनी थी। तो जब गैप तैयार होगा तो ये कुछ ऊपर के निषेकों के साथ, क्योंकि जितना अनिवृत्तिकरण का काल है उसको छोड़कर गुण श्रेणी के ऊपर के जो थे निषेक उसको भी गैप में लेना है, अंतर में लेना है। शीर्ष भी और ऊपर, शीर्ष भी और ऊपर के कुछ निषेक भी, यानी शीर्ष प्लस ऊपर के निषेक, इनको लेकर अभाव होगा। हाँ, अब आगे मैं यहां से पढ़ती हूँ। वहां भी अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग बीतने तक यही विधि होती है। जब संख्यातवे भाग प्रमाण काल शेष रहता है तो अंतरकरण करके अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि हो जाता है, यानी अभी उसका अंतिम समय है, गैप तैयार की। एक्चुअली अंतरकरण के बाद उपशम करण भी होता है और बाद में वो अंतिम समय में आता है, ठीक है। फिर भी हाँ, और वहां मिथ्यात्व के बंध और उदय की विच्छित्ति करके
ये तो साइमल्टेनियसली होता है ना, उपशम करण भी।
देखो यहाँ तो अपना विषय उपशम सम्यक तो प्राप्त करने की बात नहीं है, अपने तो प्रदेशों को बताने का है। जब संख्यात विभाग काल शेष रहा तब उसने अंतर समाप्त कर दिया है, तो अभी ये जो इतने यहाँ निषेक बाकी है, इतने समय बाकी है, उन समयों में वो क्या करता है, एक एक समय नीचे से गलेगा और बाकी ऊपर के जो द्रव्य है गैप के ऊपर उसको एक एक समय करके उपशमित करेगा। उपशमित करने का कार्य भी मान लेते ऐसा इतना उपशम किया, जो उपशमित नहीं है वो परमाणु ऊपर से नीचे भी आते रहेंगे तब तक, इसको आगाल कहेंगे, आगाल प्रत्यागाल भी, क्योंकि कुछ वहां तो बंद भी हो रहे हैं ना, तो ये आगाल प्रत्यागाल जो चलता है, आगाल तो चलेगा ही, यहाँ उपशम करने का कार्य चलेगा तब तक थोड़े थोड़े परमाणु आएंगे, जब उपशमित करने का कार्य पूरा हो गया तो अभी यहाँ से कोई परमाणु नहीं आएंगे, और बाय दैट टाइम उपशमित करने का कार्य चल रहा था तो नीचे के निषेक भी गल रहे थे। ये अंतिम समय मिथ्या दृष्टि का, अंतिम समय में भी वो उपशमित होने का अंतिम कार्य हो गया, अब ये भी निषेक गल गया, बंद की और उदय की विच्छित्ति हो गई, ना उदय रहा ना बंद रहा, तो यहाँ प्रथम समयवर्ती औपशमिक समय दृष्टि हुआ। ये उपशम करने का कार्य उसके बारे में यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि अपना विषय वो नहीं चल रहा है। नहीं, पहले अंतरकरण पूर्ण होता है, उसका अंतर्मूर्त बीत जाए फिर जाके उपशम करण होता है। ना 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 ना, पहले उसके बिना उपशम समय दृष्टि हो ही नहीं सकता। अभी नहीं बनाए, प्रथम उपशम सम्यक्त के पहले समय में बनेगा, अभी तो उसने मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व को उपशमित कर दिया है, मिथ्यात्व के ही परमाणु को उसने पूर्ण उपशमित किया। अब जब उसको पहला समय प्राप्त होगा उस समय में मिथ्यात्व में से उसका तीन टुकड़े होके तीन प्रकृतियां बनेंगे। देखो वहां मिथ्यात्व के बंद और उदय की विच्छित्ति करके उसके अनंतरवर्ती ऊपर के समय में अंतर में प्रवेश करके जहां गैप बनाई थी मिथ्यात्व के निषेकों का, जहां अभाव था वहां प्रवेश करके प्रथम समयवर्ती उपशम समय दृष्टि हो जाता है, यानी उसके पहले उपशम करता ये यहां नहीं लिखा है, अपना प्रयोजन वो नहीं था इसलिए। उसी समय में जिस समय कि वह उपशम समय दृष्टि हुआ, क्या कहते हैं उसी समय, कौन सा उपशम सम्यक तो होने का पहला समय, उसी समय दूसरी स्थिति में स्थित, एक दूसरी स्थिति का अर्थ होता है द्वितीय स्थिति, गैप के नीचे जो थी उसको कहेंगे प्रथम स्थिति, गैप के ऊपर है उसको कहेंगे द्वितीय स्थिति, उसी को दूसरी स्थिति कहा, ऊपरी तन नहीं कहेंगे अभी, प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति। तो ये द्वितीय स्थिति में स्थित मिथ्यात्व के प्रदेश समूह को मिथ्यात्व सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमाता है, मिथ्यात्व को ही अभी तीन रूप से परिणमाता है। कब से शुरू होती बात, औपशमिक सम्यक्त के पहले समय से। ये जो है ना, इसी के बारे में वो तो सुखी जीवन नाम की पुस्तक लिखी थी, ये तो उसके पहले से वो परिणमाते वगैरह बहुत बातें ऐसी कुछ उल्टी पुल्टी लिखी थी, फिर बाद में उसको हमने ठीक करवाया है, वो जयपुर से भी पुस्तक छपी थी ना रतन जंजी भारील की। तो उपशम सम्यक्त के पहले समय से वो तीन टुकड़े होते, उसके पहले नहीं होते। पुनः अंतर्मूर्त काल तक गुणसंक्रम के द्वारा, देखो अभी उपशम सम्यक तो प्राप्त हुआ है, अब यहाँ पर गुणसंक्रमण शुरू हुआ है। जब हम आगे चल के अपूर्वकरण गुणस्थान की बात करेंगे वहां गुणसंक्रमण भी पहले से होता है, औपशमिक सम्यक के काल में पहले से गुणसंक्रमण नहीं होता, जब औपशमिक सम्यक तो प्राप्त हो गया तब गुणसंक्रमण होगा, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति बनेंगे, गुणित प्रमाण में संक्रमण होगा। जैसे गुण श्रेणी में असंख्यात गुणा देखा था, वैसे संक्रमण होने में असंख्यात गुणा हो जाएगा। अन्य में भी नहीं है, क्योंकि ऐसा लिखा है प्रथम उपशम समय के काल में कि यहाँ पर गुण संक्रमण नहीं होता, अन्यत्र होता है। ऐसे खास औपशमिक सम्यक्तों के प्रकरण में लिखा है अन्यत्र होगा। ऊपर वो असाता का साता आदि जो कोई बननी है प्रकृतियां वो तो बनेगी, तो यहाँ पर नहीं होती। देखो तीन हो गए ना, पुनः अंतर्मूर्त काल तक गुण संक्रम के द्वारा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को पूर्ता हुआ, पूर्ता हुए ने उस समय उसमें परिणमित करता हुआ। गुण संक्रमण जो है औपशमिक सम्यक्तों के थोड़े काल तक ही गुण संक्रमण होता है, पूरा औपशमिक सम्यक्तों का काल गुण संक्रम का काल नहीं है। तो पहले छोटे अंतर्मूर्त तक गुण संक्रमण करेगा, करता हुआ जघन्य परिणामों के द्वारा ही पूर्ता है। यहाँ भी उसके जघन्य ही परिणाम है। देखो परिणामों की वेरिएशंस बहुत है, तो यहाँ क्या कहा, अंतर्मूर्त काल के द्वारा, अंतर्मूर्त काल तक गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को पूर्ता हुआ जघन्य परिणामों के द्वारा ही पूर्ता है। यथा गुण संक्रम के प्रथम समय में मिथ्यात्व का जो प्रदेश समूह यानी जितने परमाणु सम्यक्त प्रकृति में संक्रमण करता है वह थोड़ा है। मिथ्यात्व में से डायरेक्ट सम्यक प्रकृति रूप भी हो गए, कुछ परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप हो गए। तो जो प्रदेश समूह सम्यक प्रकृति में संक्रमण करता है वह थोड़ा है, और उसी समय में सम्यक मिथ्यात्व में संक्रांत होने वाला मिथ्यात्व का प्रदेश समूह उससे असंख्यात गुणा है।
ये जगन्य परिणाम की बात है।
हाँ, ये किसी भी समय, भी पहले समय में क्या होता है, सम्यक रूप से जितने परिणमित हो गए, मान लेते हम एक्स मान लेते हैं, तो असंख्यात एक्स सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाएंगे। दूसरे समय में इससे असंख्यात गुणे सम्यक प्रकृति के हो गए, और उससे असंख्यात गुणे सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाएंगे। एक हमने मान लिया है, यह असंख्यात की साइन है। पहले समय में जितने, अब इसको हम एक मानेंगे और इसको असंख्यात के बदले चार कहेंगे, तो यदि पांच परमाणु परिणमित होते हैं तो एक सम्यक प्रकृति और चार सम्यक मिथ्यात्व रूप। दूसरे समय में चार से ये सोलह हो जाएंगे और ये 64 हो जाएंगे, पर इससे ये चार गुणा करना, इस तरह से लेना, हर समय में ऐसा ही लेना।
तो यहाँ पे ये जो जघन्य परिणाम है, जो जघन्य परिणाम से होता है, वहाँ पे ये जो प्रोपोर्शन है वो उत्कृष्ट
प्रोपोर्शन वही होगा
उत्कृष्ट,
परंतु पांच के बदले वहाँ 20 परमाणु लेने पड़ेंगे। वो तो क्षपणा में होगा, अभी यहाँ तो मिथ्या तो में से ही जा रहे हैं, अभी चार में से भी जो कुछ जाएंगे तो भी हम उसको 16 में ही गिनेंगे। देखो हम 84 पृष्ठ पर आए हैं। प्रथम समय में सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमन करने वाले प्रदेश समूह से जो हमने अभी चार माना है, दूसरे समय में सम्यक्त रूप से संक्रमण करने वाला प्रदेश समूह असंख्यात गुणा है, चार के बदले हमने 16 माना है। वो बोले मिथ्यात्व में से आया हो या कहीं से, अभी उसकी चर्चा नहीं यहाँ पर। उससे उसी दूसरे समय में सम्यक मिथ्यात्व में संक्रांत होने वाला प्रदेश समूह असंख्यात गुणा है। इस प्रकार गुण संक्रमण के सब काल में यानी प्रत्येक समय में वो प्रपोर्शन वही होगा उसका। गुण संक्रमण के सब काल में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के पूर्णे का क्रम कहना चाहिए। अभी इसी का विशेषार्थ समझाएंगे। देखो हाँ, एक चार वगैरह हर समय ऐसा ही। पहले समय में ये एक है तो ये चार है, दूसरे समय में चार से भी असंख्यात गुना, यह हमने 16 मान लिया है, और उसी समय में ये 64 है। आगे के समय में इसको चार से गुना करना, 64 को, हाँ 256 हो गया, और उससे भी चार गुना करना, 1024। ये पंचलब्धि में भी लिखा है। यहाँ तो असंख्यात गुणा वाला है ये, इससे यहाँ जो मिथ्यात्व के परमाणु है, मिथ्यात्व के परमाणुओं से ये इनमें जो असंख्यात गुणा वाला है, परंतु उसके अनुभाग में अनंत गुणाहीन, अनंत गुणाहीन है। अनुभाग तो अनंत गुणाहीन होगा ना, वो तो लता दारू वाले हैं और ये तो दारू वाले हैं। तो प्रदेशों में असंख्यात गुणाहीन और अनुभाग में अनंत गुणाहीन। विशेषार्थ सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उत्कृष्ट संचय उस जीव के बतलाया है जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संचय करके सातवें नरक से निकलकर, उन्होंने एक शब्द में लिखा था गुणित कर्माओं से जीव, अब ये सातवें नरक से निकला है तो उसी उसके नेक्स्ट भव में तो वहां कोई वहां पर उसके हाँ सम्यक तो प्राप्त नहीं होता है। फिर धीरेंश में 2-3 भव घूमेगा, फिर मनुष्य में आएगा, क्योंकि मनुष्य में आकर उसको उपशम सम्यक तो करके फिर सपना भी करनी है आगे जाके, इसे मनुष्य में लाए उसको। तो सातवें नरक से निकलकर तिर्यंचों के 2-3 भव धारण करके, ये समझ में है ना, 2-3 भव धारण करके, क्योंकि वो तो तिर्यंच में ही जाएगा और फिर उसी भव में उसको सम्यक तो भी नहीं हो सकता। 2-3 भव धारण करके मनुष्यों में जन्म लेकर गर्भ से लेकर 8 वर्ष की उम्र में सम्यक को प्राप्त करके फिर दर्शन मुख का क्षपण करता हुआ जब मिथ्यात्व की अंतिम फाली को सम्यक मिथ्यात्व में संक्रांत करता है तब उसके सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय होता है। ये सम्यक मिथ्यात्व के प्रदेश समूह अधिक से अधिक किसके है उसकी बात चल रही है। ये तो अभी उसको औषमिक सम्यक तो प्राप्त किया है, वो भी जघन्य परिणाम से। क्यों? यदि उत्कृष्ट परिणाम हो उसके तो जो मिथ्यात्व की गुण श्रेणी बनी थी वो बड़ी यानी वो उसका और ज्यादा निर्जरा हो जाएगी। तो हमें तो मिथ्यात्व के परिणाम परमाणु पहले ही नहीं खिपाने, वो अभी कम से कम जाए ऐसी बात करनी है। तो जघन्य परिणाम में उसने औषमिक सम्यक तो प्राप्त किया है, जघन्य परिणाम के द्वारा ही संक्रमण किया है, यानी अभी तो मिथ्यात्व रूप से है उसके, थोड़े थोड़े संक्रमित हो गए वो तो हो गए ही। अब बाद में जाकर उसको जब क्षपणा करेगा वो, तब जब मिथ्यात्व के सभी परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप से अंतिम फाली में जाएंगे तब सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य उत्कृष्ट होगा, ये बात बताना चाहते। उसके लिए बाकी सारा प्रोसेस अभी समझा रहे। पहले में उन्होंने एक वाक्य में तो कब होता है वो बता दिया, अब उसकी विधि बताएंगे। हाँ, सातवें नरक की बात है।
सातवें नरक से निकला हुआ जीव को कम से कम 2-3 बहुतों तिरंच के ही लेने पड़ेंगे।
हाँ,
और बाद में वो मनुष्य में आएगा तो सम्यक्तो की प्राप्ति करेगा।
हाँ,
इसका अर्थ ऐसा ही निकलता है ना,
ऐसे ही
डायरेक्टली सातवें में से तो मनुष्य में
सातवें में से तो मनुष्य में कोई आता ही नहीं।
अच्छा, तिरंच में आया,
तिरंच में आता है उस भव में कोई सम्यक्तो प्राप्त करता है।
बराबर। हाँ, लेकिन उसके बाद मनुष्य में आवे तो
जो कोई उनकी कंडीशन है 2-3 भव बिताने की,
तो हो सकता है कि उस मनुष्य भाव में उसको सम्यक्त्व नहीं हुए, फिर तिरंज में जावे।
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हमने ऐसा जीव लिया है ना कि त्रस पर्याय का वो अंतिम भव अंत की ओर वाला भव लिया है, तो इसलिए। और वो तिरंजों में ऐसा कहीं लिखा नहीं, तिरंजों में पंचेंद्रियों में घूमता है ऐसा, दो तीन भव किए उसने, इतना ही लिखा है।
वो भी मिनिमम काल के लिए होना।
हाँ, अंतर्मूर्त वाले करेंगे। हाँ, अरविंद भाई कुछ देख रहे। हाँ देखो, अभी हम पांचवी लाइन से पढ़ रहे हैं। जब जीव सम सम्यक्त्व के अभिमुख होता है तो, अभिमुख यानी अभी सन्मुख जो करण परिणाम कर रहा है उसको कहेंगे अभिमुख होता है तो, उसके अधकरण अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण नाम के तीन करण अर्थात परिणाम विशेष होते हैं।
यहाँ पे जो हमने देखा अनिवृत्ति करण में तो समान परिणाम हो जाते हैं।
हाँ, अनिवृत्तिकरण में समान परिणाम
है, वो समान हो जाती है।
हाँ।
तो यहाँ पे ये जगन्य परिणाम से जो वो अपूर्व करण में प्रवेश करता है वहाँ पे उसका अनिवृत्तिकरण में तो परिणाम
समान हो जाते हैं,
तो वहाँ पे वो जगन्य क्यों बताया है?
वहाँ कहने की जरूरत नहीं है, पहले अपूर्व करण में जो है वहीं पर असमान जहाँ होते हैं वो जगन्य परिणाम से उसने शुरू किया था,
पर वहाँ पे तो सम्यक नित्यत्व प्रकृति तैयार ही नहीं हुई है।
तैयार नहीं हुई, वहाँ प्रयोजन ये है कि मिथ्यात्व के परमाणु अधिक खिर न जावे, इतना ही प्रयोजन है, इसलिए वहाँ पर लिया जगन्य परिणाम। अब अनिवृत्तिकरण के बाद औषमिक सम्यक तो प्राप्त हुआ है, उसमें भी परिणामों के वेरिएशन होंगे कि नहीं होंगे? अनिवृत्ति तो समाप्त हुआ अभी,
औषमिक सम्यक तो के काल में भी परिणामों की विविधता हो सकती है,
विविधता होगी, इसलिए वहाँ गुण संक्रमण में भी जगन्य परिणाम लिया। अनिवृत्तिकरण के लिए जगन्य परिणाम उत्कृष्ट परिणाम कुछ नहीं होते, समान होते सब। 82 में देखो, कल हमने जो पढ़ा था देखो, नीचे से ऊपर के पैराग्राफ में नीचे से पांचवी लाइन, 82 पृष्ठ पर पहले पैराग्राफ में नीचे से पांचवी लाइन सेंटर में ही, अपूर्व करण के काल में स्थिति कांडक और गुण श्रेणी क्रियाएं करते हुए जघन्य परिणामों से ही करानी चाहिए, अन्यथा अधस्थिति गलना के द्वारा, अधस्थिति गलना यानी नीचे के नीचे चले जाते हैं, और गुण श्रेणी अधिक असंख्यात गुणा अगर उसमें द्रव्य दिया जाएगा तो निकल जाएंगे अधोगलना के द्वारा, बहुत द्रव्य के विनाश का प्रसंग प्राप्त होता है, किंतु अनिवृत्तिकरण में अधस्थिति गलना के द्वारा गलने वाले द्रव्य की रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां जगन्य और उत्कृष्ट परिणामों का भेद नहीं है। हमने कल पढ़ा था इसको, अपूर्वकरण में ही जगन्य कहेंगे, अनिवृत्ति में जो तो जाना है वो जाता ही है, जहाँ बच सकता है वहाँ जगन्य परिणाम कह दिया।
तो यहाँ पे अनिवृत्ति कारण में जो परिणामों की समानता हो जाती है, तो जो चौथे गुण स्थान में जाएगा और सातवें गुण स्थान में जाएगा वहाँ पे वो फर्क कैसे हो जाता है? क्योंकि
वहाँ की गुण श्रेणी अलग, आयाम उसका छोटा होगा, और गुण श्रेणी रूप से जो दिया जाता है वो अधिक होगा माल सातवें में जाने वाले के, स्थिति खंडन ज्यादा होगा, गुण श्रेणी का आयाम छोटा होगा, और गुण श्रेणी में दिया जाने वाला द्रव्य अधिक होगा, वो उसमें विशुद्धि ज्यादा है। इसलिए यहाँ तो हमें उसमें वेरिएशन नहीं करना है, हमें तो जगन्य परिणाम वाली बात है, तो जगन्य परिणाम चौथे में जाने वाले के होंगे।
हाँ।
वो तो है ना, चौथे में जाने वाले भी चार गतियों के जीवों की बात करेंगे तो उसमें भी अलग अलग वेरिएशन होगा, एक ही गति में भी परिणामों की असमानता होती है, क्योंकि चौथे में जाने योग्य जो परिणाम है उसमें भी कितने भेद है। हमने तो अध प्रवृत्त में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद देखे, जिसमें असंख्यात लोक बार षट्स्थान वृद्धि के परिणाम हो सकते हैं, यानी बहुत बड़े वेरिएशन है उसमें मिनिमम परिणाम लेना। देखो हम यहाँ पढ़ रहे थे विशेषार्थ की पांचवी लाइन। जब जीव उषम सम्यक के अभिमुख होता है तो उसके अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नाम के तीन करण अर्थात परिणाम विशेष होते हैं। इनमें से अधकरण के होने पर तो जीव के प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि मात्र होती है। इतने उसमें तो इतना ही कार्य होता है। क्या होता है? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती रहती है, जिससे अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग बंध में प्रति समय हीनता होती जाती है और प्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग बंध में प्रति समय वृद्धि होती जाती है। ये उसमें इतना ही कार्य होता है। हमने तो स्थिति बंधापसरण भी देखा था ना, यानी स्थिति बंधा अल्प होता है, उसकी बात यहाँ नहीं लिए। किंतु अपूर्वकरण और अनियतिकरण में चार कार्य होते हैं। कौन कौन से? स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, गुण श्रेणी और गुण संक्रम। देखो स्थिति खंडन तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों में होगा, परंतु अनुभाग का कम होना अप्रशस्त में होगा, प्रशस्त में तो बढ़ेगा। पहले बंधे हुए सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति के घटाने को स्थिति खंडन कहते। ये सादी भाषा में क्या बताया? ऑलरेडी जो बंधे हैं और सत्ता में जो पड़े हैं, ऐसे कर्मों की स्थिति को घटाना, यानी उनके ऊपर के निषेकों का अभाव होकर उनके परमाणु नीचे सर्वत्र आ मिलेंगे। पहले बंधे हुए सत्ता में स्थित अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग के घटाने को अप्रशस्त डाले ना, अनुभाग खंडन कहते हैं। पहले बंधे हुए सत्ता में स्थित कर्मों का जो द्रव्य गुण श्रेणी के काल में प्रति समय असंख्यात गुना स्थापित किया जाता है, उसे गुण श्रेणी कहते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्मों का, अभी जो हमने देखा गुण श्रेणी रूप से जो कोई रचना होती है उसको गुण श्रेणी कहते हैं, तथा प्रति समय उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर आगे आगे के समय में गुणित क्रम से विवक्षित प्रकृति के परमाणुओं का अन्य प्रकृति रूप होना गुण संक्रम कहता है, मैंने उसको गुण संक्रमण कहेंगे। गुण श्रेणी का विधान इस प्रकार जानना, ये गुण श्रेणी क्या है उसको समझाते हैं। विवक्षित कर्म के सर्व निषेक संबंधी सब परमाणुओं में क्या कहते हैं? अभी जितने सत्ता में जितने निषेक पड़े हैं उन सभी निषेकों में मिलकर परमाणुओं की जितनी संख्या है उसको अपकर्षण भागार का भाग देने से, या उत्कर्षण का नाम नहीं लिया क्योंकि अपकर्षण भागार कहो या उत्कर्षण भागार करो एक ही बात है, सेम है, उसकी प्रमाण उनका समान है, इसलिए एक का नाम ले तो भी चले। अपकर्षण भागार का भाग देने से जो परमाणु लब्ध रूप से आए उन्हें अपकृष्ट द्रव्य कहते हैं। कितने द्रव्य का अपकर्षण होगा? तो टोटल नंबर ऑफ परमाणु डिवाइडेड बाय अपकर्षण भागार, जो उसकी संख्या आएगी लब्ध आएगा उतने परमाणु अपकर्षित हो जाएंगे, उनकी स्थिति घटेगी। उस अपकृष्ट द्रव्य में से कुछ परमाणु तो उदय वाली प्रकृति की उदयावली में मिलाता है। उदय वाली प्रकृति यानी जो उदय रूप प्रकृति है, उस उदय रूप प्रकृति के उदयावली में वो दिए जाते हैं। कुछ परमाणु हमने देखे ना, जितने अपकर्षित द्रव्य है उसको असंख्यात लोक का भाग दिया था और एक भाग परमाणु उदयावली में दिए थे, वो भी नीचे ज्यादा फिर ऊपर थोड़े कम। यही बात यहाँ बता रहे हैं। तो अपकृष्ट द्रव्य में से कुछ परमाणु तो उदय वाली प्रकृति की उदयावली में मिलाता है, यानी जो प्रकृति उदय रूप है उसके उदयावली मात्र जो निषेक है आवली प्रमाण निषेक उसमें दिए जाते हैं। कुछ परमाणु गुण श्रेणी आयाम में मिलाता है, आयाम यानी लंबाई, कितनी गुण श्रेणी हमने देखी थी, अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस और कुछ, और बाकी बचे परमाणुओं को ऊपर की स्थिति में मिलाता है, जिसको हमने ऊपरीतल स्थिति कही थी। वर्तमान समय से लेकर आवली मात्र काल संबंधी निषेकों को उदयावली कहते हैं। उस उदयावली में जो द्रव्य मिलाया जाता है, वह उसके प्रत्येक निषेक में एक एक क्षय घटता हुआ होता है, नीचे से लेकर ऊपर एक एक क्षय घटता हुआ दिया जाता है। तो पहले समय में कितना दिया जाएगा, दूसरे समय में कितना दिया जाएगा, इसका जो गणित है ना, जो अभी हम देख रहे हैं, यहाँ तो घटता हुआ देना है, वहां तो हम बढ़ते हुए क्षय की बात की थी। पहले निषेक में जाए, जैसे निषेक रचना होती है, जैसे हमने 6300 परमाणु ग्रहण के लिए तो पहले में 512 दिए थे, ऊपर थोड़े कम, उसी पद्धति से यहाँ भी दिया जाएगा। तो प्रत्येक निषेक में एक एक छह घटता हुआ होता है। उस उदयावली के निषेकों से ऊपर के अंतर्मूर्त समय संबंधी जो निषेक है, उनको गुण श्रेणी आयाम कहते हैं। आयाम यानी उसकी लंबाई, अंतर्मूर्त प्रमाण है, क्योंकि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण का काल मिला के और फिर और थोड़े निषेक मिला के उसको गुण श्रेणी आयाम कहना। उसमें जो द्रव्य दिया जाता है, देखो थोड़ा द्रव्य किस में दिया, उदयावली में दिया। अब यहाँ जो द्रव्य है वो गुण श्रेणी वाला द्रव्य, वह प्रत्येक निषेक में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा दिया जाता है। नीचे के उदयावली के ऊपर का जो पहला निषेक है उसमें कम, उसके दूसरे में असंख्यात गुणा, तीसरे में उससे असंख्यात गुणा, चौथे में उससे असंख्यात गुणा। असंख्यात गुणा दिया जाता है। गुण श्रेणी आयाम से ऊपर के सब निषेकों को ऊपर की स्थिति कहते हैं। उस ऊपर की स्थिति के अंत के जिन आवली मात्र निषेकों में द्रव्य नहीं मिलाया जाता, ये जो ऊपरीतन स्थिति है, उसके लास्ट वाले जे आवली मात्र निषेक, उनमें द्रव्य नहीं दिया जाता, उसको अतिस्थापनावली कहते हैं। अंत वाली, जहाँ आने वाला द्रव्य नहीं है, बस वहां से जाएगा नीचे, आएगा नहीं उसमें कहीं से। बाकी के निषेकों में जो द्रव्य मिलाया जाता है, वह प्रत्येक निषेक में उत्तरोत्तर घटता हुआ मिला जाता है। गुण श्रेणी में असंख्यात गुणा अधिक यानी क्रम से, उसके ऊपर एक एक क्षय घटता हुआ, जैसे अभी उसको समझाया है। विवक्षित कर्म की स्थिति 48 समय है, उसके निषेक भी 48 है। यहाँ सत्ता की बात है ना, इसलिए आबाधा नहीं लिया है, इसलिए स्थिति जितने निषेक है उतनी स्थिति बताई। उन निषेकों के सब परमाणु 25,000 है, उनमें अपकर्षण भागहार का कल्पित प्रमाण 5 से भाग देने से 5,000 लब्ध आया। अतः 25,000 में से 5,000 परमाणु लेकर, अभी कोई भी प्रमाण लिया है समझाने के लिए, उसमें से 250 परमाणु तो उदयावली में दिए। टोटल कितने अपकर्षित हुए? 5,000। इन्हें 25,000 में टोटल परमाणु थे, उसमें से 5,000 अपकर्षित हुए, 5,000 में से 250 परमाणु उदयावली में दिए। हमने देखा ना, जितना अपकर्षित होता है उसको असंख्यात लोक से भाग दो तो एक भाग उदयावली में जाएगा। 48 निषेकों में से प्रारंभ के 4 निषेक उदयावली के है, ये मान लेते हैं हम। तो ये जो 4 निषेकों में 250 परमाणु दिए जाएंगे, उनमें उत्तरोत्तर घटते हुए परमाणु दिए, यानी पहले निषेक में ज्यादा, उससे ऊपर थोड़े कम। अब 1,000 परमाणु गुण श्रेणी आयाम में दिए, 250 दिए थे उदयावली में, 1,000 दिए हैं गुण श्रेणी में। सो पांच से लेकर बारह तक आठ निषेक गुण श्रेणी आयाम के हैं। समझाने के लिए बताया, पहले चार तो उदयावली वाले थे, अब पांचवे से लेकर आठ निषेक बारह तक, पांचवे से लेकर बारहवें तक जो आठ निषेक गुण श्रेणी के हैं, इनमें उत्तरोत्तर असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे परमाणु मिलाए, यानी नीचे कम ऊपर अधिक 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 करके असंख्यात गुणे मिलाए। बाकी के 3750 परमाणु ऊपर की स्थिति में दिए, ऊपर की भी एक एक छह घटते हुए, हाँ ऊपरी तन में, क्योंकि चार उदयावली के गए, आठ गुण श्रेणी के बारह गए, तो 48 में से बारह गए, 36 तो रहेगी ना। सो शेष 36 निषेक रहे। अब इसमें अति स्थापनावली को भी छोड़ना है अंत में,
चार ऊपर के,
हाँ उनमें से अंत के चार निषेक अति स्थापना रूप है, उन्हें छोड़ बाकी 13 से लेकर यानी 13वें से लेकर 12वें तक तो गुण श्रेणी थी, 13वें निषेक से लेकर 44 पर्यंत 32 निषेकों में उत्तरोत्तर चय घाटी परमाणु मिलाए। चय घाटी ने चय से हीन, यहां तक बात ख्याल में आई जो हमने पहली देखी थी। यहां गुण श्रेणी आयाम का प्रमाण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल से कुछ अधिक होता है। इस गुणश्रेणी आयाम के अंत के निषेकों को गुणश्रेणी शीर्ष कहते हैं, क्योंकि शीर्ष अर्थात सिर ऊपर के अंग का नाम है। इस प्रकार प्रति समय मिथ्यात्व प्रकृति के संचित द्रव्य का अपकर्षण करके गुणश्रेणी करता है। हाँ, गुण श्रेणी आयाम के अंत के निषेकों को यानी अधिक निषेक लिए हैं, गुण श्रेणी शीर्ष कहते हैं। अनिवृत्तिकरण के ऊपर के जो है उसको शीर्ष कहेंगे ज्यादा, हाँ कहेंगे। यहाँ एक ही निषेक को नहीं कहा है, निषेकों को कहा है। ये ऐसे गुणश्रेणी का करना हर समय चल रहा है। जब अनिवृत्तिकरण के काल में से संख्यात्व भाग काल बाकी रहता है तो मिथ्यात्व का अंतरकरण करता है। अंतरकरण ने भी बीच में गैप होगी गुणश्रेणी के ऊपर, विवक्षित कर्म की नीचे और ऊपर की स्थिति को छोड़कर, नीचे की स्थिति प्रथम स्थिति कहलाएगी, ऊपर को द्वितीय कहलाएगी, उसको छोड़कर मध्य की अंतर्मूर्त मात्र स्थिति के निषेकों के अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। ऊपर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के काल से जो कुछ अधिक गुणश्रेणी आयाम कहा था, सो यहां वह कुछ अधिक भाग ही गुणश्रेणी शीर्ष है। ये बात आ गई यहाँ पर। हमने क्या देखा था, गुणश्रेणी का आयाम कितना है, अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस कुछ अधिक, तो कुछ अधिक को सबको गुणश्रेणी शीर्ष कहा। उस गुणश्रेणी शीर्ष के सब निषेकों, अब उनका सबका अभाव हो जाएगा, क्योंकि अनिवृत्तिकरण काल तक ही निषेक रहेंगे ना, उसके ऊपर तो निषेक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां तो सम्यक तो प्राप्त होना है। तो गुणश्रेणी शीर्ष के सब निषेक अभाव में चले जाएंगे अंतर में, तो गुणश्रेणी के सब निषेकों और उससे संख्यात गुणे गुणश्रेणी शीर्ष से ऊपर के ऊपर की स्थिति संबंधी निषेकों को मिलाने से अंतर कितना होगा, गुणश्रेणी में जितने हैं उतने प्लस उसके संख्यात गुणे उसके ऊपर से
निषेक।
शीर्ष में मान लेते तीन है
तो ऊपर 12,
तो और उसके चार गुणा करो ना, तो 3 और 12 जो कुछ समझने के लिए, गुण श्रेणी के निषेक प्लस उससे संख्यात गुण निषेक ऊपर के, इन सब का अभाव किया जाता है। मिलाने से अंतरायाम, अंतरायाम में अंतर की लंबाई, अर्थात अंतर का काल होता है जो अंतर मूर्त मात्र है। इतने निषेकों को बीच से उठाकर ऊपर की अथवा नीचे की स्थिति में स्थापित करके उनका अभाव कर देता है। यहाँ अथवा लिखा है परंतु और ऊपर की और नीचे के, अथवा इसलिए कहा कुछ ऊपर जाएंगे कुछ नीचे, इसलिए अथवा डाला है। यहाँ अंतरकरण करने के काल के प्रथम समय से लेकर अनिवृत्तिकरण का जो संख्यात्व भाग काल शेष रहा था उसके भी संख्यात्व भाग काल पर्यंत तो अंतरकरण करने का काल है। क्या कहा? अंतरकरण शुरू कब किया था? जब अनिवृत्तिकरण का संख्यात्व भाग शेष रहा था।
बहुभाग बीत जाने पर
अब जितना बाकी रहा है उसके भी संख्यात्व भाग में अंतरकरण करने का कार्य पूरा होता है। जितना शेष काल था उसके भी संख्यात्व भाग काल में अंतरकरण करने का कार्य होता है। देखो क्या कहा था, फिर पढ़ती हूँ। यहाँ अंतरकरण करने के काल के प्रथम समय से लेकर अनिवृत्तिकरण का जो संख्यात्व भाग काल शेष रहा था उसके भी संख्यात्व भाग काल पर्यंत तो अंतरकरण करने का काल है। अंतरकरण का काल, अंतर का काल नहीं, अंतर का काल तो अंतर्मूर्त प्रमाण ऊपर किया, जितने निषेकों का अभाव किया उसको अंतर का आयाम कहा, अंतर आयाम यानी अंतर का काल। और वो अंतर करने का प्रोसेस जितने काल में कर दिया उसको कहेंगे अंतरकरण का काल। दोनों में डिफरेंस ख्याल में? अंतर कितने का किया?
अंतर्मूर्त।
तो ऊपर के मान लेते गुण श्रेणी आयाम और ऊपर इतना अंतर कर दिया, ये अंतर करने के लिए कितना काल लगा?
अंतरकरण काल।
हाँ, वो उसको कहेंगे
संख्यात्व भाग का संख्यात्व,
जो संख्यात्व भाग रहा था उसके भी संख्यात्व भाग में अंतर करने का कार्य पूरा होता है। प्रथम स्थिति में आवली मात्र काल शेष रहने पर मिथ्यात्व की स्थिति और अनुभाग का उदीर्णा रूप से घात नहीं होता। क्या कहते हैं? ये नीचे के निषेक तो गल ही रहे हैं, अब जब आवली मात्र रहेंगे तो उदीर्णा किसको कहते हैं? उदयावली में देने को उदीर्णा कहते हैं। तो उदयावली हमारी मान लेते 4 है, तो उदयावली के ऊपर के निषेकों का उदयावली में देना उसको उदीर्णा कहेंगे। अब नीचे से गलते गलते 4 ही बाकी रहे
तभी उदीर्णा नहीं,
तभी इसके ऊपर यहाँ निषेक नहीं कि जो इसमें आके मिले तो उसकी उदीर्णा भी रुक जाती है। जब आवली प्रमाण शेष रहते हैं, यहाँ क्या कहा देखो, प्रथम स्थिति में आवली मात्र काल शेष रहने पर मिथ्यात्व की स्थिति और अनुभाग का, दोनों की बात है, उदीर्णा रूप से घात नहीं होता, किंतु स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात प्रथम स्थिति के अंतिम समय पर्यंत होता है। यहाँ जो द्वितीय स्थिति में स्थित है उनके स्थितियों का घात है, ऊपर के इतने निषेक चले जाएंगे इनका घात होकर इनके जो निषेक है वो सर्वत्र यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात तो चल ही रहा है, परंतु यहाँ आवली मात्र निषेक रह जाते हैं तो इसमें उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा का अर्थ क्या है? अभी वो नीचे आकर उदय रूप होना। हाँ, अंतर के बाद ही प्रथम स्थिति कहेंगे, तभी तो आवली मात्र रहेंगे, नहीं तो फिर उसको तो पूरी स्थिति उसकी कहलाएगी। अंतर पड़ा है इसीलिए पहली स्थिति और दूसरी स्थिति नाम दिए ना हमने, नीचे के स्थिति को पहली स्थिति, ऊपर के द्वितीय स्थिति कहा।
यहाँ पे ये लिखा है प्रथम स्थिति में अवली मात्रा काल शेष रहने पर मिथ्यात्व की स्थिति का तो उदीर्णा नहीं होती है,
यानी स्थिति का घात होकर उदय में नहीं आती,
और अनुभाग का उदीर्णा रूप से घात नहीं होता है, पर वहाँ पे अनुभाग का घात तो प्रति समय में तो होता है,
अनुभाग खंडन ये यहाँ चल ही रहा है,
यहाँ नीचे में अनुभाग का खंडन नहीं हो रहा है,
उदयावली वाले उनकी नहीं हो रही,
पर वहाँ पे तो विशुद्धता तो अनंत गुणी बढ़ती जा रही है,
हाँ, अनंत गुणी बढ़ती है, तो आप कहते हैं यहाँ तो अनुभाग का घात क्यों नहीं कहा, उदीर्णा रूप से घात क्यों नहीं कहा,
वो ऊपर के,
तो ऊपर के जो अधिक अनुभाग वाले हैं, वो यहाँ पर ऐसे नहीं आएंगे,
पर यहाँ पे अनुभाग का खंडन होगा,
हाँ, उसका अनुभाग का घात होकर प्रति समय अनुभाग हीन होना वो कार्य चलेगा, परंतु उदीर्णा रूप से घात नहीं होगा ये कहना, यानी ऊपर के अधिक अनुभाग वाले परमाणु यहाँ आकर नहीं मिलेंगे ऐसा कहना है, वहां का अनुभाग घटता चला जाएगा। देखो किंतु स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात प्रथम स्थिति के अंतिम समय पर्यंत होता है, यानी वो अंदर सत्ता में पड़े हुए उनमें तो घात होगा, इस प्रकार मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति का क्रम से वेदन करता हुआ वह जीव, वेदन करता हुआ तो का अर्थ क्या है, उसका उदय है उसको वेदन करता हुआ कहेंगे, तो उसके मिथ्यात्व परिणाम भी हो रहे हैं, वह जीव चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि होता है, यह अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय है, उसके अनंतरवर्ती समय में मिथ्यात्व की संपूर्ण प्रथम स्थिति को समाप्त करके उपशम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है, अर्थात अंतरायाम में प्रवेश करने के प्रथम समय में ही दर्शन मोनि का उपशम करके उपशम समय दृष्टि हो जाता है, अभी उसमें समय में उपशम करके ऐसा नहीं है, उपशम करने का जो कार्य है वो तो अंतर करने के बाद चलता रहता है, संख्यात्व भाग के संख्यात्व भाग में अंतरकरण करने का कार्य पूरा हुआ, और जो बाकी काल है उसमें उपशम करने का कार्य शुरू हुआ, वो तो एक समय में उपशमित नहीं हो सकता, उसके लिए भी अंतर्मुहूर्त लगेगा, एक समय में कुछ किए दूसरे समय में किए तीसरे समय में किए, फिर भी जो उपशमित नहीं हुए हैं वो परमाणु द्वितीय स्थिति में से प्रथम स्थिति में आते रहेंगे, ऐसा कब रुक जाएगा, आवली प्रमाण रहने पर वो रुक गया, वो आगाल जो होता था वो तो रुक गया, परंतु उपशमित करने का कार्य अंतिम समय तक चलेगा, और फिर उसके बाद औपशमिक सम्यक्त की प्राप्ति होगी, उसी प्रथम समय में मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतियों की उत्पत्ति होती है, जैसे चाकी में दले जाने से यानी चक्की में धान्य के तीन रूप हो जाते हैं, उसी तरह अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से एक दर्शन मुनि कर्म तीन रूप हो जाता है, यहाँ दर्शन मोह का सर्वोपशमन नहीं होता, अतः उपशम हो जाने पर भी संक्रमकरण और अपकर्षण करण पाए जाते हैं, यानी उसमें उपशम होने पर भी संक्रमण होता है ना, हमने अभी देखा गुण संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तैयार होती है, इसलिए एक अंतर्मूर्त काल तक गुण संक्रम के द्वारा मिथ्यात्व के प्रदेश संचय का सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण होता है, जिसका क्रम पूर्व में बतलाया है। ये सारा विशेषार्थ हुआ, हाँ। ये अपना प्रोसेस हुआ नहीं ना, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा तो हमने तो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण की बात भी आ गई, शाम को ये विषय चल रहा है हमारा, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में। हाँ अभी गुणस्थान अधिकार में ही, हाँ गुणस्थान अधिकार में अपूर्वकरण गुणस्थान में आए हैं, वहां ये बात चल रही। हाँ अभी आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार जघन्य गुण संक्रम के कारण परिणामों से, ये गुण संक्रम के कारणभूत परिणाम है वो जघन्य लिए हैं, अभी ज्यादा संक्रमण नहीं कराना है, और उसके जघन्य काल के द्वारा, गुण संक्रमण का काल भी अंतर्मूर्त है, उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट होगा, तो काल भी जघन्य लिया, परिणाम भी जघन्य लिया, तो जघन्य परिणाम से और जघन्य काल के द्वारा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को पूरित करके अनंतर अंतर्मूर्त को बिताकर, यानी गुण संक्रमण का अंतर्मूर्त बीत गया, उसके बाद फिर और अंतर्मूर्त रुक गया, फिर उपशम सम्यक्त्व के काल के भीतर ही अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करता है। ये दो मत है ना इसके बारे में, तो यहाँ तो सर्वत्र उपशम सम्यक्त्व के काल में ही ले लिया है। फिर उपशम सम्यक्त्व के काल को समाप्त करके वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके, यानी क्षोभम सम्यक दृष्टि हुआ डायरेक्ट, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय शुरू हुआ, तो औपशमिक में से क्षोभमिक हो गया।
यहाँ पे जो अनंतानुबंधी की विश्वयोद्धा करता है,
हाँ।
वहाँ पे वापस तीन कर्म परिणाम नहीं होगी,
होते हैं, उसके बिना अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं
हो सकती। यहाँ पे जो उपशम कर्म, उपशम के काल में जो उसने विसंयोद्धा कर दी,
हाँ।
वहाँ पे क्या होगा?
उपशम के काल में जो विसंयोजना की है,
हाँ।
वहाँ पर भी उसके यथा योग्य हो,
उसका कर्म परिणाम हाँ। होगी।
अंतर चालू ही है उसका, परंतु उसका गुण संक्रमण रुक गया है ना अभी,
इसीलिए
गुणित संक्रमण नहीं, उसका गुणित संक्रमण रुक गया है, परंतु उसका जो संक्रमण है वो अन्य विद्यात संक्रमण वगैरह चलेगा, विद्यात संक्रमण चलेगा उसका। हाँ देखो, वेदक सम्यक्त को प्राप्त करके उसमें अंतर्मूर्त काल तक ठहर कर दर्शन मोके क्षपण का प्रारंभ करता हुआ तीनों करणों को करता है, ऐसा करता हुआ वहां अधः प्रवृत्त करण को करके पीछे अपूर्व करण को करता हुआ जघन्य परिणामों से ही गुण श्रेणी को करता है, जिससे थोड़े द्रव्य की निर्जरा हो। यहाँ भी थोड़े द्रव्य की निर्जरा होती है, क्यों? जघन्य परिणाम के द्वारा किया, तथा सम्यक्त प्रकृति के अपकर्षित द्रव्य में, सम्यक प्रकृति में भी यहाँ गुण श्रेणी रूप रचना हो रही है, तो उसका जो अपकर्षित द्रव्य है, उस अपकर्षित द्रव्य में असंख्यात लोक का भाग देकर लब्ध एक भाग प्रमाण द्रव्य को उदयावली के अंदर, जैसे हमने पहले देखा था उपशम सम्यक्त के काल में उदयावली में दिया, ऊपर दिया, ऐसे यहाँ वेदक समय दृष्टि है और क्षपणा को प्रारंभ कर दिया है, वहां भी तीन परिणाम होंगे, तीन करण परिणाम होंगे, तो सम्यक प्रकृति के द्रव्य में भी अपकर्षण भागार का भाग देके उतना द्रव्य अपकर्षित होगा, उसमें से असंख्यात लोक का भाग देके एक भाग उदयावली में दिया जाएगा। उदयावली के अंदर गोपुच्छ के आकार रूप से निक्षेपण करता है, गोपुच्छ का अर्थ क्या है? चयहीन प्रमाण में देता है। क्योंकि उस प्रकृति का उदय है, जिसका उदय है उसके उदयावली में दिया जाता है, अर्थात जैसे गौ की पूंछ क्रम से घटती हुई होती है, वैसे ही एक एक चय घटता क्रम से निषेकों की रचना उदयावली में करता है, और बाकी बचे अपकृष्ट द्रव्य को उदयावली से बाहर गुणश्रेणी के आकार रूप से स्थापित करता है। हमने देखा ना, गुणश्रेणी रूप से रचना होती है उसकी, अर्थात ऊपर ऊपर के निषेकों में असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे द्रव्य का निक्षेपण करता है। यह तो उदय प्राप्त सम्यक्त प्रकृति की गुणश्रेणी रचना का क्रम हुआ। उदय रूप कौन सी प्रकृति है? सम्यक प्रकृति। उसमें कैसा होता है ये क्रम बताया। परंतु मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के अपकृष्ट द्रव्य को उदयावली के बाहर ही गुणश्रेणी के आकार रूप से निक्षेपण करता है, क्योंकि उनका उदय नहीं है, वहाँ उनके आवली मात्रा में कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर ही निक्षेपण होगा। आवली प्रमाण निषेक छोड़कर ऊपर ही उनका निक्षेपण होगा, क्योंकि उदयावली में देना उसी का अर्थ होता है उदीर्णा होना। उदीर्णा उसी की हो सकती जिसका उदय है, यानी यहाँ उसके निषेक होने पर भी उनमें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका उदय नहीं है। हमने क्या देखा था? उदयावली में देना किसमें दिया जाएगा? जिसका उदय हो उसके, उसी को उदीर्णा भी कहलाएंगे। तो यहाँ मिथ्यात्व की उदीर्णा कैसे हो सकती है? उसका उदय ही नहीं है। सम्यक प्रकृति की उदीर्णा कहलाएंगे, क्योंकि जो उदयावली में दिया जाता है उसी को तो उदीर्णा कहते हैं। अर्थात जैसे गौ की पूंछ क्रम से घटती हुई होती है, वैसे एक एक चे घटता क्रम से निषेकों की रचना उदयावली में करता है। और बाकी बचे ये पढ़ा था हमने, नीचे हम पढ़ रहे थे। परंतु मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के अपकृष्ट द्रव्य को उदयावली के बाहर ही गुणश्रेणी के आकार रूप से निक्षेपण करता है, क्योंकि उनका उदय नहीं है। अर्थात उदय प्राप्त प्रकृति के अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेपण उदयावली में करता है, किंतु जिसका उदय नहीं है उसके अपकृष्ट द्रव्य का निक्षेपण उदयावली से बाहर करता है। तथा गुणसंक्रम के द्वारा प्रति समय मिथ्यात्व को सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में संक्रांत करता है, यानी उसका संक्रमण तो यहाँ भी चलेगा, गुण संक्रमण। इस प्रकार अपूर्वकरण के काल को बिताकर अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग बीतने पर दुरापकृष्टि नाम की स्थिति की उत्पत्ति होती है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ स्थिति भी घटती चली जा रही है, स्थिति कांड घात हो रहे हैं ना, तो यहाँ स्थिति घटती चली जा रही है। जैसे पहले में पहले के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थितियों का खंडन होता है सागरों की स्थिति ऐसे घटती चली जाएगी। तो दुरापकृष्टि का अर्थ बताएंगे, इसलिए वहां से लेकर दुरापकृष्टि स्थिति के असंख्यात खंड करके उनमें से बहुत से खंडों को मिथ्यात्व के द्विचरण स्थिति कांडक के प्राप्त होने तक अंतर्मूर्त के द्वारा घातता है। देखो ये दुरापकृष्टि और वो घातने की बात हम कल देखेंगे, क्योंकि ये विषय थोड़ा अलग आता है यहाँ से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक न हो सदा देतो। मयंक भाई